صحابہ کرام کی خوبی کیا تھی؟ کہ جب وہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے نا تو علم کی بنیاد پہ پڑھتے تھے۔ ہم نے آج اس قرآن کو دلاسوں اور لوریوں کے ساتھ پڑھا اور نہ سمجھنے کے انداز سے پڑھا۔ آپ دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو اللہ نے جب دنیا میں کوئی نعمت دی نا تو اس کے بعد اللہ کے خوف نے اس نعمت کی خوشی ختم کر دی۔ آگے آخر میں آئے گا ٹاپک، وہاں بھی کچھ چیزیں آئیں گی، لیکن یہاں بھی ضروری ہے کہ حضرت عمر دوپہر گرمی کی بھوکے پیاسے اور انگوروں کا گچھا ہاتھ میں جو کسی نے پیش کیا، کھانے لگے، انگور توڑا اور منہ کے قریب کیا اور چھوڑ دیا۔ ہم ہوتے تو کہتے پتہ نہیں اس پہ ایک ہلکا سا دبا لگ گیا، اس کو ٹریش کر دیتے۔ ہم نعمتوں کو ضائع کرتے وقت سوچتے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ لیکن بہرحال جب دیکھنے والے نے پوچھا کہ عمر ابھی تو آپ کو بھوک اور پیاس تھی تو یہ کیوں چھوڑ دیا، اب ان کا جملہ جو نا یہ ہمیں دل کی تختیوں پہ لکھنا ہے، کہاں عمر کی نیکیاں اور کہاں ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو کھاتے کھاتے کیوں رک گیا کہ مجھے خیال آ گیا کل قیامت کے دن اللہ میدان محشر میں یہ نہ کہہ دے کہ اے عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے میں نے اس گرمی کی دوپہر میں تجھے یہ انگور کھلا دیا تھا، یا ٹھنڈے پانی کے لیے بھی آتی ہے بات، تو میں نے یہ نہیں لینی کیونکہ مجھے آخرت میں ادھر لینا ہے۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ انگور کھانا چھوڑ دیں، اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ آپ ٹھنڈا پانی پینا چھوڑیں۔ عمر انگور کھاتے بھی تھے، ٹھنڈا پانی بھی پیتے تھے، یہ ونس اے وائل کبھی کو کیفیت ہوتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ بعض لوگ اسی سے پھر دلیل لیتے اب کھانا ہی نہیں، اب پینا ہی نہیں، تو سارے انگور گلتے سڑتے رہیں گے، کیا شراب بنانی ہے اس کی؟ اللہ نے کھانے کو دی، کھاؤ، اچھے کام کرو۔ احساس محاسبے کا خوف تھا، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جب انسان کے اندر آتی ہیں تو پھر وہ دنیا کی لذتوں کو پا کر محو نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا اگر ہم ڈکشنری کے اس ناطے سے خوف لفظ کو بھی دیکھ لیں تو خوف خا واو فا سے یہ لفظ آتا ہے، اس کے معنی گھبراہٹ، حیرانی اور پریشانی کے ہیں، اور ڈر جانے کو کہتے ہیں۔ خاف یخافو خوفن او خیفن او مخافتن او الامر منہ خفا، یہ ساری اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں، جو آپ کو سمجھ اس میں آئے وہ کر لیں۔ لیکن اسی سے لفظ تخویف بھی ہے، اور احافتم پہلے جو لفظ تھے نا خود ڈرنا ہے، اب جو دو تین بول رہی ہوں نا یہ دوسرے کو ڈرانے میں آئیں گے، باب افعال ہے، اور التحویف وغیرہ۔ ڈرنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خائف۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسم فاعل کیا ہے؟ خائف۔ کون ہوتا ہے خائف؟ وہ شخص جو مارے ڈر کے گھبراہٹ میں مبتلا ہو، اور جب یہ کہا جائے کہ خوف الرجل، تشدید ڈال دیں بس خوف کے اوپر واو پہ، تو پھر اس سے مراد آتا ہے لوگ اسے دیکھ کر ڈرنے اور گھبرانے لگے۔ یعنی ڈرنا بھی مانی ہے تو ڈرانا بھی ہے۔ سورۃ آل عمران 175، انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ خبر دینے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے۔ اصل میں وہی حمر الاسد کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب ابو سفیان نے کچھ لوگوں کو لے کر یہ خبر پھیلا دی تھی مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کے لیے کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو ڈرنے کی بجائے ان کے ایمان اور بڑھ گئے، اور کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو انہی کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ابو سفیان کے پاس، بلکہ یہ شیطان ہے جو ہمت توڑتا ہے۔ تو یہاں ایک جملہ نوٹ کر لیں، نیکیوں کے کاموں سے ہمت توڑتا ہے شیطان۔ شیطان آپ کو جب ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہے اور آپ نہیں رکتے تو پھر کیا کہتا ہے؟ تمہیں تو کرنا ہی نہیں آتا، اتنی تو تم غلطیاں کرتی ہو، اور کیا فائدہ جب کر کے غلطیاں کرنی ہیں تو بہتر ہے کام ہی چھوڑ دو۔ حالانکہ اس نے یہ کبھی نہیں کہا ہوگا کہ کام کرنے والے ہی تو غلطیاں کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ اپنی میٹ سے کہیں کہ میرے سے تو آج تک ایک پلیٹ بھی نہیں ٹوٹی، تو اگر وہ ذرا بولنے کی جرت کر سکے نا تو کہے گی باجی آپ نے برتن دھوئی کب ہے؟ جو دھوتا ہے اسے ٹوٹتے ہیں نا۔ مبارک ہیں وہ لوگ، قابل مبارک ہیں وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ غلطی کر کے یا اپنی کوششوں کے باوجود کچھ نہ کرنے والا بہتر ہے کچھ نہ کرنے سے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کام نہ کرو۔ پھر ایک اور خوف شیطان کیا ڈالتا ہے، یہ جو شیطان کے ڈرانے کی باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ کہ ابھی تمہاری اپنی تو اصلاح نہیں ہوئی، تو دوسروں کو بہت نصیحت، خود میاں فضیحت کرو ہی نہ۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت ہڈن وار ہے، چونکہ تمہاری اپنی اصلاح نہیں ہوئی تو تم دوسروں کی بھی نہ کرو۔ उस जालिम ने हमारी नेकियों को उचकना ही है, हर सूरत उचकना। आप इसका इलाज क्या करें? कि तभी तो मैं दूसरों को बताती हूँ। एक आलिम है, गालिबन मेरा गुमान है कि अशरफ थानवी साहब का ये कॉल है, कि मैं अपना अमल जिस चीज़ में कम होता देखता हूँ ना, मैं उस पर दर्स देना शुरू कर देता हूँ, कि दूसरों को बताते बताते मेरी इसलाह हो जाएगी। और इट्स ट्रू, आप लोगों की इसलाह करें तो 10 लोग माशाल्लाह आपकी इसलाह करेंगे। कैसे? तनकीद, बातें, आपकी एक एक चीज़ वो नोट करेंगे, तो माशाल्लाह जिस बंदे को 10 लोग मांझने लग जाए वो कितना मांझेगा। कई लोग अल्लाह ताला से तो कम डरते हैं, लोग उनको डराते हैं ज़्यादा। तो याद रखिए कि शैतान किसी न किसी तरह नेकी लेगा। आपके नई अमल फिर भी करना है, शम्मा बनना है, खुद जलती है, दूसरों को रोशनी देती है। हाँ, दूसरों को बताने में अमल होगा, वरना होगा क्या? सहाबा किराम वापस चले जाते इस मौके पे तो क्या होता? कुफार के हौसले बुलंद होते, कहता देखो बड़े शौक से निकले थे, वापस चलेंगे, अब इन्होंने तो कभी हमारे सामने नहीं आना। तो ये बातें समझने की हैं। लेकिन यहाँ ये बात क्या है कि खौफ जो होता है ना, ये इंसान के अंदर हरकत पैदा करता है। वसवसे जो आते हैं ना, ये भी खौफ की वजह से, वहम की तरफ से आते हैं। फिर इसी तरह से एक इमाम सालब है, इनका कॉल है कि मतलब क्या है इस सारी बात का, कि शैतान तुम पर अपने दोस्तों और हमराहियों का रोब और दबदबा डालकर तुम्हें हौलनाकी और घबराहट की कैफियत से दोचार करता है। जब बस मरूब कर देता है, पीयर प्रेशर में डाल देता है शैतान। डरौने रास्ते को अरबी जुबान में कहते हैं तरीक़ु मुखव्वफु व मखीफ। कभी होता है ना रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, पहाड़ी इलाकों में जाएं लोग कहते हैं बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, या रास्ते में जंगल है, तो तरीक़ु मुखव्वफ कहते हैं। इसी तरह जब अरब लोग बोलते हैं कौमुन खाइफून, तो इससे मुराद घबराहट और डर से दो चार लोग हैं। लेकिन याद रखिए, खौफ बहुत बड़ा मोटिव है, लिख लें इसको भी अपने जम्स में। खौफ वो मोटिव है जो बंदे को जन्नत के करीब करने के काम करवाता है। बल्कि दो मोटिव हैं, दोनों ही लिख रहे हैं, एक आज कर रहे हैं एक अगला। सूरत अल अराफ में दोनों मौजूद हैं, 56 आयत में, वदूहु खौफम व तमा, और तुम अल्लाह को पुकारो उससे डरते भी हुए और उम्मीद भी रखो। तो खौफ हरकत दिलवाता है। मिसाल दूंगी, आपसे कहा जाए कि आप सारे लोग इस कमरे से निकल जाएं, शायद 15-20 मिनट लगेंगे आप सब में से आखिरी को निकलते हुए, और अल्लाह ना करे इधर एक छिपकली निकल आए तो कितने मिनट लगेंगे? फ्यू सेकेंड। ये खौफ है, एक छिपकली का खौफ हमें इस कमरे से भगा दे तो जहन्नम की छिपकलियां और उसके बिच्छू क्या हमारी हरकत तेज ना करें? सुस्त लोगों का ये इलाज है, अपने लिए लिख लें। अगर अल्लाह के लिए बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो कब्र का सोना याद कर लें। आज सुस्ती की बात है तो कल क्या होगा? एक कोटेशन मैंने कल के दर्स में शेयर की, इस पर एक छोटा सा दर्स भी दिया 20-25 मिनट का, कि एक बादशाह ने एक शख्स को कहा कि देखो तुम सुबह फजर के बाद चलना शुरू कर दो, और चलते जाओ मगरिब तक जितनी जगह कवर करके एक दायरे की शक्ल में वापस आ जाओगे ना, वो सब जगह मैं तुम्हारे नाम लिख दूंगा, अलॉट कर दूंगा। लालच से इंसान में होता ही है ना, उसने चलना शुरू कर दिया, चलता गया चलता गया। नतीजा क्या निकला कि जोहर हो गई, काफ़ी फासला तय कर चुका था। दिल में आया कि वापस पलट जाऊं, ताकि अब वापसी का भी इतना ही लंबा रूट है। फिर कहने का नहीं, अभी थोड़ा और चलता हूँ, अभी तो दिन बहुत बड़ा है, मैं फिर वापस तेज चल दूंगा। और चला तो आगे सामने एक बड़ा खूबसूरत पहाड़ और वादी और फल फूल दिखे। कहेंगे नहीं, मैं अब वहां तक जाऊंगा, ये भी मेरे नाम हो जाए, ये मेरा इलाका बन जाएगा। किस्सा मुख्तसर, असर का वक्त आ गया, पहुंच चलते ही जा रहा है। अब एकदम उसको ख्याल आया, क्या करूं, भागूं? अब वापस भागा। वो जो भाग रहा है उसको लग रहा है सूरज मेरे से भी तेज भाग रहा है। अब उसको ये पता था कि मैं अगर अपने असल मुकाम पे ना पहुंचा तो सारे दिन की मेहनत गई। चूंकि भागा तो उसके दिल पे बोझ पड़ा, उसको झटका पड़ा, लेकिन वो भागता ही रही भागता ही रहा। खौफ ज़्यादा, पसीने आ रहे हैं, तो उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, और आखिर सूरज के डूबने से पहले एकदम उसका दिल घटा। और वो जब गिरा तो इस तरह गिरा, अब अपनी इमेजिनेशन में या अपने नोट्स में दायरा बनाए, दायरा पूरा बनते बनते आ गया वापस, लेकिन इस तरह से गिरा कि उसके पाँव वहाँ जहाँ तक उसने कवर किया और उसका सर उसको टकरा चुका है जहां से उसने अपनी जगह शुरू की थी, और वो गिरा और उसने दम तोड़ दिया। तो कहते हैं अल्लाह ने कहा कि इसको मरने के बाद बस इतनी कब्र की ज़रूरत थी जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी का दायरा खींचा। और ये हम सब के साथ हो रहा है, हम भागते हैं भागते हैं भागते हैं और फिर कब्र में जाके सो जाते हैं। अल्लाह ताला के साथ इंसान का मामला जब खौफ और उम्मीद का बैलेंस्ड होता है ना, तो फिर दुनिया की दौड़ उतनी रह जाती है जितना इधर रहना है, और आखिरत का गम उतना लग जाता है जितना के वहाँ रहना है। अगर हम डिक्शनरी के साथ खौफ की तारीफ़ देख लें, मुश्किल तारीफ़ है लेकिन उसको मैं कोशिश करूँगी एब्जॉर्बिंग बना सकूँ आपके लिए। दिल में पैदा होने वाला शक और बेचैनी, इमेजिन करें, दिल में कभी आता है ना इस्तराब आ गया, बेचैनी आ गई, और उसमें जज्बात आते हैं, हैजान आता है, किसी नापसंदीदा मामले के पेश आने के वक्त जो दिल की कैफियत है ना, उसको खौफ कहते हैं। ये जो दो लफ्ज़ आपने अभी सुने हैं ना, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरह बकरा 112, तो खौफ और हुज़न था। खौफ किसका होता है? मुस्तकबिल का, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, बेटियों के रिश्ते हो जाए, मियाँ दूसरी शादी ना कर लें, ये ना हो जाए, वो ना, खौफ हमेशा फ्यूचर का है, और हुज़न माजी का, पिछले ही गमों में रोते रहते हैं और वो कहना चाहिए कि बैक मिरर में देख कर जिंदगियाँ गुजार देते हैं। खौफ क्या है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा काम ना मेरे सामने आ जाए जिसको मैं देखना नहीं चाहता। एक तरफ खौफ होता है दिल में और एक तरफ रग़बत भी होती है। किसी ज़न्नी या कतई अलामत की बुनियाद पर नापसंदीदा और गैर मरगूब चीज़ के वाक़े होने की तवक्को को खौफ कहते हैं, या पसंदीदा चीज़ के ज़ायल होने की उम्मीद की आस लगाना खौफ है। मिसाल दे देती हैं आपको, शादी हुई, 1-2 महीने गुजर गए, अब कहते हैं पता नहीं मेरा बच्चा होना है कि नहीं, ये भी खौफ है कि पता नहीं होना नहीं, अच्छा बच्चे ना हुए, अच्छा फिर बच्चे नहीं होंगे तो मियाँ शादी कर लेंगे, फिर योग ऐसे ही रह जाते खौफ, कोई भी नहीं होने होते, ये भी खौफ है। और इसका ऑपोजिट, शादी हुई बच्चा हो गया साथ ही, अब बच्चे को मिलता ही क्या है, ये बीमार ना हो जाए, इसको नज़ला क्यों हो गया, इसकी छींक क्यों आ गई, इसके बाल टेढ़े क्यों हो रहे हैं, ये भी खौफ है। ये है इधर किसी नापसंदीदा चीज़ का आना या पसंदीदा चीज़ के छिनने का खौफ, जो इसको खौफ कहते हैं। इब्ने क़दामा कहते हैं कि तुमको मालूम होना चाहिए कि आइंदा दौर में पेश आने वाले नापसंदीदा कामों के वाक़े होने की तवक्को के सबब जो दिल में कैफियत पैदा होती है ना, उसको खौफ कहते हैं। वही बात है, लफ्ज़ फ़र्क है सिर्फ। मसलन आप देखिए, एक शख्स है किसी बादशाह के पास गया और वहाँ जाके उसने कोई गुस्ताखी कर दी, तो अब उसको डर होगा ना कि मुझे बादशाह इस बात पे पकड़ेगा। और एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है, इसको भी आप बेशक हाईलाइट कर लें, कि जब बंदे को ये डर होता है कि या तो बादशाह मुझे कत्ल कर देगा इस गुस्ताखी पे या माफ़ कर देगा, तो जो वो अंदर उम्मीद और खौफ की जो कैफियत है ना, उसको खौफ कहते हैं। दोनों कैफियतों के अंदर जो जज्बा है ना, वो खौफ का जज्बा कहलाता है। छोटे जुर्म कियों तो खौफ थोड़ा होता है, बड़े जुर्म करने वालों को खौफ बड़ा होता है। जब हम अल्लाह ताला की छोटी छोटी बातें नहीं मानते तो बहुत छोटे छोटे खौफों का शिकार रहते हैं, और ऑपोजिट भी है। और याद रखिए कि यह खौफ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आगे एंड पे जाके अगर ना इसमें आई बात तो फिर आप इसे पूछिएगा कि अगर खौफ ना पैदा हो तो कैसे पैदा करें, लेकिन इंशाल्लाह इसमें आ रहा है आगे बहुत। 21 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इसके, लेकिन आइए ज़रा देखते हैं कि कुरान पाक में खौफ किस किस मानी में, यानी आप कह ली थी किस किस चीज़ का खौफ होता है, टिप्स बोलूँगी। 1, 2, 3 आयतें आपके सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहले कत्ल और मौत का खौफ, कुरान में इसका तज़किरा है, सूरत निसा 83। वाइज़ा जा हम अमरु मिनल अमनी अविल खौफी अज़ाउ बिही, जब इन्हें कोई ख़बर अमन की या खौफ की मिली तो उसको मशहूर करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि कत्ल और मौत को भी खौफ कहा गया। इसी तरह सूरह बकरा की मशहूर आयत 155, वला नब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जुई वनक्स मिनल अमवाल, में पहली चीज़ जिससे अल्लाह बंदों को आजमाता है ये खौफ है। फिर इसी तरह कलमा खौफ जो है ये किताल के मानों में भी आया, लड़ाई के मानों में लिख लीजिए इसको, सूरत अल-अहज़ाब आयत 19 में आता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़ैज़ा जाल खौफ रअयतहुम यनज़ुरून इलैक, कि जब खौफ और दहशत का मौका आता है तो आप इनको देखेंगे कि ये आपकी तरफ नज़रें जमा देते हैं। असल में ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पे मुनाफिकीन का हाल है कि जब ऐसी जंगें होती हैं तो उस वक्त उनका कलेजा मुँह में आ रहा होता है। फिर इसी तरह खौफ गैर मरगूब चीज़ के हासिल होने की तवक्को की पेशन गोई के तौर पर आई ये बात कहाँ, सूरह बकरा 182, फमन खाफ अमिन मोहसिन जनफन अव इस्मन, कि वसीयत करने वाला अगर गलत वसीयत कर दे और उसका किसी में झुकाव हो तो तुम उसकी सलाह कर दो। इसी तरह सूरह बकरा 229 में भी यही मानी है, किसी एक की तरफ माइल होना, इल्ला ये खाफ अल्ला युकीम हुदूद अल्लाह। फिर इसी तरह सूरत निसाए 3 में अल्लाह ताला कहते हैं, वाइन खिफ तुम अल्ला तुकसितु फिल यतामा, कि तुम्हें अगर यतीम औरतों में इंसाफ का ख़तरा हो तो फिर तुम एक से ज़्यादा निकाह ना करो या यतीम बच्चियों से ना करो। आप देख रहे हैं कि खौफ का ताल्लुक अल्लाह से भी है, बंदों से भी है। यहाँ ये आप बात अपने लिए नोट करें। फिर एक से ज़्यादा बीवियों या एक बीवी का अपने शौहर के अंदर कुछ ऐलान अपनी तरफ ना देखने पर क्या खौफ है, सूरत निसा 128, वाइन इमरातुन खाफत मिन बालिहा, कि अगर किसी औरत को अपने शौहर की बददिमागी और बेपरवाही का खौफ हो तो दोनों आपस में जो सुलह कर लें तो इस पर कोई गुनाह नहीं। फिर इसी तरह नक्स और कोताही के मानों में ये लफ्ज़ सूरत नाहल आयत 48 में आया है, औ या खुज़ाहुम अला तखव्वुफिन, बड़ी ज़बरदस्त आयतें हैं इसके आगे पीछे, कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे पकड़ने में चलते फिरते में पकड़ ले तो कौन है जो तुम्हें इससे बचाए। फिर इसी तरह अजाब और इकाब के मानों में भी ये लफ्ज़ आया है खौफ और हशियत का, सूरह सजदा आयत 16, यदू न रब्बहुम खौफम व तमान, कि अल्लाह को खौफ और तमा से पुकारते हैं। फिर इसी तरह अब यहाँ आपके सामने दो लफ्ज़ क्लियर होते जा रहे हैं, हम अभी इसका फ़र्क देखेंगे। एक लफ्ज़ है खौफ और एक है खशियत। सूरत आले इमरान 175 में, व खाफ़ूनी इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो मुझसे डरा करो। और मायदा 44 में आता है, फ़ला तख्शवुन नास वख्शौनी, लोगों से मत डरो मेरा खौफ इख्तियार करो। फिर इसी तरह फातिर 28 में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तो इन सारी बातों से अब दो टर्म्स की तरफ बात जा रही है हमारी, कि खौफ और खशियत इन दोनों में फ़र्क क्या है। हदीसों को भी अगर चंद देख लें तो हज़रत अनस की रिवायत है अल्लाह के नबी से, कि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह का तकवा अख्तियार करने वाला और खाइफ रहने वाला बंदा हूँ। क्या पता चला, किसी पीर वली मुर्शिद कुतुब गौस को भी अल्लाह से बेदयास नहीं रहना। अल्लाह के नबी से बड़ा कौन था वली, वो भी अल्लाह से डरते थे, फरिश्ते भी अल्लाह से डरते हैं, ये भी नोट कर लें। सूरत नहल आयत 50, यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम, वो जो उनके ऊपर रब है उससे वो डरते हैं। और अंबिया कराम कितना डरते थे अल्लाह से और किस बात से डरते थे, सूरत अल अहज़ाब आयत 40, अल्लज़ीन युबल्लिगून रिसालातिल्लाह व यख्शौनहू व ला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह, ये सब लोग ऐसे थे कि अल्लाह के अहकाम पहुंचाते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। क्या पता चला कि अम्बिया की सिफत थी कि अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरना अल्लाह की बात कहने में। ओवरऑल देखा जाए तो खौफ लफ्ज़ के मादे से कुरान पाक में 124 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, 124 टाइम्स आया 112 आयतों में, यानी कुछ आयतों में एक से ज़्यादा दफ़ा भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो क्या पता चला कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बड़ा अहम है।